श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य अद्वैताचार्य के घर में प्यार संख्या है 97 मेरे पीछे बोली तोरे निमंत्रण करी पैनो तारे फल तोरे जाति कुल नाही सहजे पागल तारे निमंत्रण करी पैनो तारे फल तोरे जाति कुल नहीं सहजे पागल बोलिए बोलिए माताएं तोरा तुम्हारी जाति कुल नाही कोई जाति और कुल नहीं है सहजे स्वभाव से ही पागल पागल हो तो अद्वैताचार्य ने हंसी मजाक में कहा कि हे नित्यानंद मैंने तुमको निमंत्रित किया और सचमुच उसका फल पाया तो तुम्हारा कोई ना तो तुम्हारी कोई निश्चित जाति है और ना कोई कुल है और स्वभाव से ही तुम पागल हो मेरे पीछे बोली अद्वैताचार्य ने हंसी हंसी में कहा हे नित्यानंद मैंने तुम्हें निमंत्रित किया और सचमुच उसका फल पाया तुम्हारा ना तो कोई निश्चित कुल है ना जाति है, स्वभाव से ही तुम पागल हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जो शब्द है सहजे पागल कि स्वभाव से ही पागल, हाँ संकेत मिलता है इन शब्दों से कि नित्यानंद प्रभु दिव्य रूप से परमहंस के धरातल पर स्थित हैं, क्योंकि वे हमेशा राधा कृष्ण का और उनकी सेवा का स्मरण करते हैं, हाँ तो ये दिव्य पागलपन है। श्री अद्वैताचार्य इस सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि जो भक्ति योग का मार्ग है ये ऐसा शुष्क नहीं है, है कि बिल्कुल शुष्क रहें और बिल्कुल हंसी मजाक नहीं, जो बाकी जो योग पथ होते हैं दूसरे दूसरे प्रकार के योगी होते हैं तो बिल्कुल गंभीर रहते हैं, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं, या कोई ध्यान में ऐसे मस्त रहता है वो बात ही नहीं करता किसी से, या सतयुग में ध्यान योग की विधि थी है ना, तो उस विधि में जो है एकांत में ही रहना बिल्कुल, और एकांत में भी दो लोग एक साथ नहीं रह सकते अकेले, एकांत में बिल्कुल अकेले, रहस्य स्थिता एकाकी, बिल्कुल एकाकी है ना, मतलब दो लोग अगर होंगे तो कुछ बातचीत होगी, तो बिल्कुल दो लोग भी नहीं होने चाहिए। तो ये विधि है सत्यों की ध्यान की, तो बहुत ही विधि क्या है शुष्क है ना, लेकिन कलयुग में क्या है भक्तियों की विधि, तो भक्तियों की विधि तो बहुत दिव्य है, लेकिन ये विधि जो है दूसरे युगों में प्रकट नहीं होती, क्योंकि लंबी आयु है बहुत शक्ति है, तो दूसरे दूसरे मार्ग बताए जाते हैं, लेकिन कलयुग में लोग इतने बेकार हो गए हैं और बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं कि उनको फिर जो है भक्ति का मार्ग ही प्रशस्त किया जाता है, और भक्ति का मार्ग क्या है शुरू से अंत तक सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है ना। तो ये जो शब्द है अद्वैताचार्य के इसे क्या कहते हैं ब्याज निंदा, ब्याज निंदा, निंदा के बहाने प्रशंसा करना है ना। तो नित्यानंद प्रभु की वो जो है देखने में तो निंदा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या हो रही है प्रशंसा हो रही है, तो इससे जो है भगवान बहुत संतोष होते हैं, इस प्रकार की निंदा से भगवान बहुत संतोष होते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग हैं तो कृष्ण की इस प्रकार की निंदा करते हैं, ब्याज निंदा, कृष्ण की निंदा करते हैं कि कृष्ण तुम्हारी आदत बहुत खराब है, वो कहते हैं कृष्ण तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, जो तुम्हारा भजन करते हैं उनके जन्म जन्म के जो है जो उनकी संपत्ति है पापों की संपत्ति तुम चुरा लेते हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारी आदत है ना। तो जन्म जन्म हमने बटोरे क्या पाप बटोरे, इतना परिश्रम किया है? और तुम जो है इकट्ठा चोरी कर लेते हो सब चुरा लेते हो, अच्छी आदत नहीं तुम्हारी है ना। तो इस प्रकार से जो है भक्ति में भक्त लोग भी आपस में इस प्रकार की हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक का जो उद्देश्य होता है वो अपमान करना नहीं होता है ना, वो देखने में लगता है कि अपमान कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो उद्देश्य होता है सम्मान करना। तो जो भाव है तो वो जो है समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति अगर निंदा भी कर रहा है किस भाव में निंदा कर रहा है, तो वो जो है सामने आ जाता है भक्तों को, और ये आपस में जब समानता होती है तो ज्यादा इस प्रकार की हंसी मजाक होती है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दोनों समान धरातल पर हैं, और भगवान चैतन्य के जो है दोनों दो भुजाओं की तरह हैं, तो इस प्रकार की जो है इनमें जो है हंसी मजाक होती है। और दूसरी बात यह है कि भगवान चैतन्य चूंकि भोजन कर रहे हैं तो भगवान को जो है भोजन के समय ये बहुत अच्छा लगता है हंसी मजाक करना है भोजन के समय। तो आज मैं विशेष रूप से आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं, ये जैमिनी महाभारत की घटना है, तो बड़ी जो है रोचक घटना है, और भगवान जो है भोजन कर रहे हैं तो भगवान के भोजन में जो है किस प्रकार की बातें होती हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। और भगवान जो है कभी कभी भोजन करते समय कुछ बोलते नहीं हैं और बहुत गंभीर हैं, बिल्कुल बोल नहीं रहे, गंभीर हैं, लेकिन वो भी जो है उनकी चेष्टा हंसाने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये जो है मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये घटना उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, तो 5 पांडवों को जो है पूरी पृथ्वी का राज्य मिल गया, कौरवों का विनाश हो गया, और भगवान कृष्ण अब द्वारका में है। और युधिष्ठिर महाराज जो है इस बात की चिंता में कि उनके द्वारा बहुत कुल का संहार हुआ है, उसका प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ की सब तैयारियां हो चुकी हैं और भीमसेन को उन्होंने भेजा है हस्तिनापुर से द्वारका कृष्ण को बुलाने के लिए कि कृष्ण को लेकर के आओ। और भीमसेन के पास शक्ति जो है असीमित शक्ति है, उनको जो है किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, रेलगाड़ी की जरूरत नहीं है, वो इतनी तेजी से मतलब चलते हैं, पर्वतों को लांग जाते हैं, बड़े बड़े जो है नदियों को लांग जाते हैं, और ऐसे आए असीमित शक्ति हस्तिनापुर से जो है द्वारका ऐसे मतलब चल करके आए। अच्छा आप सुनिए बड़े ध्यान से, हुआ क्या, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया उस समय वे श्री हरि बहुत से लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। माता देवकी ने सुंदरता के साथ बनाई गई एक सोने की सुंदर थाली में जिसके भीतर 64 कटोरियां सजाकर रखी गई थीं। अब सुनिए भगवान के भोजन का क्या वर्णन है, कैसे भगवान भोजन करते हैं। हम लोग तो नहीं करा सकते ऐसा भोजन, कम से कम सुनो तो जानो तो है? तो ये बड़ी रोचक बातें हैं। 64 कटोरियां सजाकर रखी गई थीं, बढ़िया अन्न परोसकर उनके सामने रख दिया था। उस भोजन में श्वेत शक्कर से मिश्रित चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण की खीर, कुमुद के सदृश सफेद भात और मूंग की दाल थी। वो भात 3 पंक्तियों में सजाए गए नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त था। इसी प्रकार का अद्वैताचार्य ने भी भोजन कराया, चैतन्य महाप्रभु भोजन कर रहे हैं, इसी प्रकार का है वो भोजन। नींबू के रस, अदरक और फल मूल से युक्त था। उस भोजन सामग्री में सैकड़ों प्रकार की उत्तम वस्तुएं तैयार करके रखी गई थी। उसमें काली मिर्च, पीपर और अदरक भी थे, केले के फल और शक्कर भी रखे गए थे, चीनी डालकर औटाया हुआ दूध परोसा गया था, यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक मिश्री मिलाया हुआ घी यानी माखन परोसा था। तो बड़े आश्चर्य की बात है, यशोदा माता भी यहां है द्वारका में। अनेक प्रकार की पूरियां थीं, दूध से बनाए गए रबड़ी मलाई आदि पदार्थ भी प्रस्तुत किए गए थे। मुनक्का, सिंसुपा फल, आम और करौंदे की बनी हुई सुंदर सुंदर चटनी आदि सामग्रियां भी थीं। श्री हरि के उस भोजन में काली मिर्च, पीपर, इलायची और कपूर मिलाकर औटाई गई कथिका जानते कड़ी, कथिका की मात्रा अधिक थी। ज्यादा मात्रा किस चीज की थी, कड़ी है, उसमें क्या है, काली मिर्च, पीपर, इलायची और कपूर मिलाकर औटाई गई कथिका की मात्रा अधिक थी। कटोरियों में रसदार चटनी रखी गई थी जिससे रसोइयों ने नाना प्रकार के फूलों के सुगंध से सुवासित करके तैयार किया था। मधु और दही से युक्त उस सुंदर पात्र में मैदे की रोटियां शोभा पा रही थीं, जो देखने में सुंदर गोल गोल चंद्रमा के बिंब के समान सब ओर से बराबर थी। सोने की कटोरी में स्वर्ण जैसा सुगंधित घी रखा था, वो भी सोने जैसा लगता है घी, जिसे देवी यशोदा ने प्रेम पूर्वक परोसा था। वहां गेहूं का आटा और कपूर डालकर बिलोया हुआ घी रखा था जिसकी प्रभा सोने के समान थी। वो सोने की कटोरी में उसी के साथ मिल गया था कि दिखाई नहीं पड़ रहा कि मतलब क्या है, वो सोने की कटोरी में मिल गया। वो वहां सुहाल या सुहारी पूरी और सत छिद्र, उसको बोलते हैं घेवर, घेवर सत छिद्र, सौ सौ छेद होते हैं ना उसमें घेवर, और जलेबियां और पुए और दूध से बने हुए रबरी मलाई दही आदि पदार्थ चमक रहे थे। मणि, मणि मतलब गोझा या गुजिया, और सूत्र संघ यानी सेवई या भुजिया, और मालती कुसुम आदि जो मिष्टान विशेष, और उलत और कुम्हड़े से बने हुए सुंदर चित कबरे पापड़ भी थे उसमें। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के बड़े खा रहे थे। वे बड़े हींग, जीरा, काली मिर्च और अदरक से युक्त एवं सुंदर थे। कुछ बड़े सेंधा नमक डालकर शुद्ध तेल में तले हुए थे। उनकी कांति कुमकुम जैसी दिख रही थी। किसी के द्वारा चोट खाए हुए दुष्ट मनुष्य उसके प्रति स्नेहहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उन बड़ों में भी स्नेह नहीं था। बड़ा अच्छा वर्णन है, इसको सुनिए क्या बताया। किसी के द्वारा चोट खाए हुए दुष्ट मनुष्य, अगर दुष्ट मनुष्य को कोई चोट मार दे तो पहले से दुष्ट है और ज्यादा वो रूखा हो जाता है। तो ऐसे रूखे थे क्या वो बड़े, बड़े ऐसे रूखे थे मतलब चिकनाई नहीं थी। चिकनाहट का मतलब स्नेह है, उसको स्नेह है ना, तो आप मुझे स्नेह प्रकट कर दिखाते हैं तो चिकनाई बोलते हैं, स्नेह मतलब चिकनाई। तो बड़ों में चिकनाई नहीं थी, रूखापन था। कैसा रूखापन था, दुष्ट व्यक्ति को जो है अगर चोट मारो तो पहले से रूखा होता है और ज्यादा रूखा हो जाता है। ऐसे बड़े जो है रूखे थे। कुछ बड़े दुग्ध मिश्रित दही में भिगोए गए थे, कुछ में इमली और आम का रस पड़ा हुआ था, कुछ दाख के रस में भीगे थे और कुछ में कढ़ी पड़ी हुई थी, कुछ राई के जल में भिगोए गए थे तो कुछ खाण में पगे थे और कुछ चार प्रकार के रसों से संयुक्त थे। इस तरह वहां नौ प्रकार के बड़े रखे थे। उस थाल में कनक नाम वाले पदार्थ हीरे की भांति चमक रहे थे। कनक यानी बर्फी, उसको कनक बोलते हैं, वो हीरे की तरह चमक रहे थे। उनमें चार बीज सुखारे गरी के टुकड़े और सैकड़ों लौंग पड़े थे। वहीं फेनिका यानी फेनी नामक मिठाइयां रखी थीं, जो कड़ाही में घी, दूध और चीनी डालकर पलटे से उलट पलटकर तैयार की गई थीं। शक्कर और खिचड़ी के मेल से उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। राजन, उस थाल में बहुत से पेड़े परोसे गए थे जो कुछ गर्म थे। वहीं लड्डू भी थे जिनमें कुछ चार बीज यानी मोती चूर के और कुछ बेसन के बने हुए थे, कुछ खांड के बने थे और कुछ का निर्माण घी और दूध डालकर हुआ था, कुछ नारियल के फलों से तथा कुछ वृक्षों की गोंद से निर्मित हुए थे, कुछ सुंदर लड्डू केवल चने के बने हुए थे और कुछ को तिल एवं चने के मिश्रण से तैयार किया गया था। श्री कृष्ण के लिए परोसे गए उस भोजन में इतने प्रकार के बढ़िया लड्डू थे। उस थाल में बवासीर का विनाश करने वाला जमीकंद, जमीकंद जो है बवासीर का विनाश करने वाला होता है, जमीकंद और सिंधुबार, इंद्रवाहक, नारंगी, इमली का गूदा, कोकुरी फल, दस धारियों वाली ककड़ी, ककड़ी में दस धारियां, और मंगलकारक सुंदर निम्ब फल यानी नींबू, और टिंटा फल यानी टिंडा, और लौंग, बेल, नील कलकक, बलकल, वंशकारीर, नवीन कायफल, दाख, आम, सुंदर कटहल, आंवला, बादाम, अंबाडक यानी अमड़ा, और केला, पीपर और सुंदर मिर्चें भी थे, जिनमें नमक तथा राई भरकर शुद्ध सरसों के तेल में डालकर 3 वर्ष तक घड़े में रखकर उनका अचार तैयार किया गया था। वहां भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के वचनों से संतुष्ट होकर भोजन कर रहे थे। तो ऐसी बातें बोलती हैं माता देवकी, जैसे कि संतुष्ट भोजन में बड़ी संतुष्टि मिलती। उस समय उनके समीप रुक्मिणी और सुंदर नेत्रों वाली लक्ष्मणा और सत्यभामा और जामवती हाथ में पंखा लिए खड़ी थीं। उनके सुंदर पायजेब बज रहे थे और कंगन और करधनी से भी रुंझुन शब्द निकल रहे थे। संगीत भी साथ साथ चल रहा है। वे सत्यभामा, जामवती, विजनयन समन्विता, चारों नूपुर सन्रावा, रणन वलय मेखला, वे हार और बाजूबंद से सुशोभित होकर श्री कृष्ण के बगल भाग में खड़ी थीं और पंखा जलती हुई पृथक पृथक उनकी ओर देखकर हंस रही थीं। उस समय वे पारिजात के पुष्पों और अन्य प्रकार के फूलों से भी विभूषित थीं और जगदीश और श्री कृष्ण को देखती हुई तरह तरह की कथाएं कह रही थीं। तब सत्यभामा ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा, अब सुनिए क्या कह रही हैं सत्यभामा। सत्यभामा बोली, श्री कृष्ण इस समय आपने ग्वालेपन का परित्याग करके मट्ठा और जल पीना छोड़कर अच्छी तरह भोजन करना सीख लिया है। पहले आप जो है ग्वालेपन में जो है क्या करते थे, मट्ठा और पानी पीते थे, हैं? आता नहीं था भोजन करना, भोजन का स्वाद ही पता नहीं था। अब आप सीख गए हो, भोजन करना सीख गए। पहले तो आप थोड़ा नम्र होकर मतलब अपने को बहुत छोटा समझ करके और आया हुआ दूध पीकर मन में गायों के पीछे दौड़ते फिरते थे कि मतलब बहुत ज्यादा अगर अच्छा भोजन अगर मिल गया तो वो यही है, औटा हुआ दूध मिल गया अगर तो वो बहुत बड़ा समझते थे कि बहुत है, और फिर ज्यादा काम करते थे, गऊओं के पीछे दौड़ते फिरते थे, है ना। तो पहले आप बहुत विनम्र थे। और यमुना तट पर खड़े होकर ग्वालों का अन्न छीना करते थे कि मिलता नहीं था खाने को। तो दूसरे सखाओं का अन्न छीन छीन के खाया करते थे। वो अब सब भूल गया है, वो सब तो अब भूल गया है, अब थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए हो। इस समय आप सारे मनुष्यों के धर्म जान गए हो, पहले मनुष्यों के धर्म नहीं थे, आदिवासियों के, उनको क्या बोलते हैं आदिवासी, हाँ निम्न धरातल, मनुष्य से भी निम्न धरातल का जो है आपका जीवन था। तो अब जो है आपको मनुष्यों का धर्म आपको जो है आ गया, हाँ शहर में आ गए हैं, जंगली लोग जैसे खाते पीते हैं, है ना। तो आता नहीं था आपको खाना, खाने पीने का स्वाद पता नहीं था आपको। अब आप जो है मानवोचित धर्म को जान गए, धर्म नंदन युधिष्ठिर की संगति से आपको अब सब बातों का ज्ञान हो गया है। संगति किसकी मिली, युधिष्ठिर की संगति मिली। तो अब आपको जो है इन सब बातों का ज्ञान हो गया है कि कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है खाने में, है बढ़िया बढ़िया चीजें है। तो इदानी मानुषम धर्मम जानाति सकलम भवान धर्मपुत्रस्य संगत्या विज्ञातम भवता अखिलम। बहन रुक्मिणी, अब रुक्मिणी से बोल रही हैं, अभी तो कृष्ण से बोल रही थी, अब रुक्मिणी से पूछ कह रही हैं, बहन रुक्मिणी इस समय इनका ऐश्वर्य तो देखो, अब इनके ऊपर दिव्य चमर डुलाए जा रहे हैं। अभी है? पहले तो गऊओं के पीछे भागते फिरते थे, चमर की बात तो बहुत दूर की है, गऊओं के पीछे भागते रहते थे और गऊओं की पूछों की थप्पड़ खाते थे, गऊ पूछे मारती थी अपने इनके ऊपर। अभी जो है इनके ऊपर दिव्य चमर डुलाए जा रहे हैं, इनका आश्रय ग्रहण करने से मेरे कर्मों का सर्वथा विनाश हो जाएगा। कल्याणी ये मतवाले से होकर ना तो दूसरी पटरानी को देखते हैं, ना अपने सुंदर रूप पर दृष्टिपात करते हैं और ना अपने कर्म फल को भोगती हुई मेरी ओर ही कभी दृष्टि डालते हैं। अब तो बस मेरा जो है रोना ही रोना है। बहन मैं बारंबार इनके सामने से आती जाती हूं परंतु ये श्री हरि कभी मुझे फिर वो देखते ही नहीं है। मैं बार बार आती जाती हूं कि देखें, इनका ध्यान नहीं जाता, फिर भी वेदों का वचन सुनकर मेरा मन इन श्री कृष्ण में ही रम रहा है। क्या सारा जगत परमेश्वर श्री कृष्ण से व्याप्त है, इस बात से जो है मेरा मन श्री कृष्ण में ही रम रहा है, इसी कारण मैं भी इस भूतल पर सदा इनकी सेवा करती रहती हूं। सत्यभामा क्यों कहने पर देवकी ने कहा, अब माता देवकी क्या बोले, अरे सत्यभामे श्री कृष्ण के संबंध में ऐसी बातें कहते हुए तुझे लज्जा क्यों नहीं आती, मैं इनकी माता हूं और वसुदेव जी इनके पिता हैं, तो भी हम दोनों श्री कृष्ण को ही हर्ष प्रदान करने वाले उत्तम कर्मों को करते रहते हैं और तू क्या चाहती है कि ये तुझे हर्ष प्रदान करें। हम तो जो है माता पिता होकर के भी कृष्ण को ही सुख देने के काम करते रहते हैं, हम थोड़ी सोचते हैं कि ये हमें सुख देंगे, और तू जो है चाहती है कि ये तुझको सुख दें। पहले इन पूर्ण परमेश्वर को मैंने लघु शिशु के रूप में अपने शरीर के भीतर धारण किया था, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कहती है कि मेरी सेवा करें और मुझे सुख प्रदान करें, मैं तो इनकी सेवा करती हूं। तू कहती है कि मैं इनकी सेवा करती हूं, क्या ऐसा कहते तुझे लज्जा नहीं आती? अरे तू कर्म की गति तो देख, जिस समय ये मेरे गर्भ में आए उस समय वीर वसुदेव जी गाढ़ बंधन में बंध गए, पड़ गए, बंदी बना लिए गए। तो हम लोगों ने कितना कष्ट सहन किया इनके कारण। और ये शत्रु संहारक श्री कृष्ण सब तरह से अपने को छिपाए रखते हैं, इनके लक्षण किसी के जानने में नहीं आते, अतः इनके माता पिता और पत्नी को जो सुख नहीं मिल रहा है इसमें उनका प्रारब्ध ही कारण है। सभी मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मानुसार ही जीवन धारण करते हैं, परंतु सुबह जो इन श्री कृष्ण का भजन करते हैं उन्हें अवश्य सुख की प्राप्ति होती है। तब सत्यभामा बोली, आर्य सास को बोलती है, आर्य आर्य मतलब बड़े को कहते हैं आर्य, आर्य इन श्री कृष्ण के समक्ष आपने सही बात कही है, परंतु मुझे तो इस बात पर परम आश्चर्य हो रहा है कि सभी ब्राह्मण आपके पुत्र इन जनार्दन को यह कहकर प्रशंसा क्यों करते हैं कि देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण महान पुरुषों के कर्मों का विनाश करने वाले हैं। देवी, ये माधव इस जन्म में मुझे महान कष्ट सहन करने वाली को भी जानते ही हैं। भद्रे, पहले गर्भावस्था में आपने इन्हें हृदय में तो धारण किया था परंतु इनका दर्शन नहीं किया था, मैं तो इन्हें प्रेम पूर्वक हृदय में भी धारण करती हूँ और प्रत्यक्ष भी देख रही हूँ, इसी कारण से ये मेरे कर्मों का नाश कर रहे हैं। सत्यभामा की ये बात सुनकर श्री हरि का मुख हर्ष से उत्फुल्ल हो उठा। जो ही वे इस देवी से कुछ कहें क्यों ही वहां भीमसेन आ पहुंचे। आप कुछ बोलना चाहते थे, अचानक क्या हो गया, भीमसेन आ गए। उन्हें आते ही हुए देख भगवान हृषिकेश ने शरंद्र से कहकर भीमसेन को वहां आने से मना कर दिया, इशारा किया कि बोलो इनको अभी बाहर रहो। भीमसेन को आने से मना कर दिया। अब सोचो भीमसेन जो खाने उनका खाना कितना होता है, कैसा खाना होता है, और उनको जो है मना किया कि अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं भोजन कर रहा हूं। मना कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि देखें रोक दिए जाने पर ये भीमसेन क्या कहते हैं, क्योंकि उन श्री हरि के मन में भीमसेन की व्यंग्यपूर्ण बात सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती थी। तो भीमसेन की बातें सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता है कृष्ण के मन में, और कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही हैं, कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही हैं। कृष्ण तो बहुत सुनना चाहते हैं भीमसेन की बातें, इसलिए उन्होंने जो है और आप लोग जो है नहीं सुनना चाहते, आंखें बंद हो रही हैं। राजन, जब श्री कृष्ण भीमसेन को भवन में प्रवेश करने से मना कर दिया तब इस निषेध आज्ञा को अपना अपमान समझकर हंसते हुए मेघ किसी गंभीर वाणी में बोले। अब हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं कि कृष्ण भी अपमान कर रहे हैं, हंसाने के लिए अपमान कर रहे हैं, है ना। तो हंसते हुए बोले, अब भीमसेन क्या बोले, वो भी गुस्सा दिखा रहे हैं ना, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। शरंद्री, जिसने मना किया था ना, तो उसी से बात कर रहे हैं, लेकिन सुनाने के लिए, कृष्ण को सुनाने के लिए, कृष्ण सुनेंगे ना, तो जोर जोर से सुना रहे हैं कृष्ण को, बोल रहे शरंद्री से, शरंद्री ये तो बताओ यदि माधव श्री कृष्ण मेरी अवहेलना करके अकेले भोजन कर रहे हैं तो वे यहां क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या देव की मृत्यु हो गई? क्या देवकी की मृत्यु हो गई कि मतलब और भोजन नहीं, मतलब भोजन की कमी है, देव की माता जो है अब और भोजन नहीं मतलब बना सकती तो भोजन कम है और कृष्ण केवल खाना चाहते हैं, क्या देवकी की मृत्यु हो गई या सत्यभामा का स्वर्गवास हो गया? अथवा इस राज्य में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की है, राज्य में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की, अन्न कम पड़ गया है, तो भीमसेन को खिलाने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, तो मुझको जो है मना किया है, या तो देवकी की मृत्यु हो गई है, या सत्यभामा का स्वर्गवास हो गया है, या द्वारका में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की है जिससे अन्न की महंगी पड़ गई है, अथवा किसी राक्षस ने इनके पुत्रों पौत्रों का बलपूर्वक संहार कर डाला है, इसलिए शोक में जो है अब वो मुझे भोजन नहीं करा रहे हैं, मतलब फिर भोजन मना होता है ना, इनके घर में जो है कुछ मरण हो गया है तो फिर मैं भोजन नहीं कर सकता। या ये श्री हरि स्त्रियों के साथ ही भोजन करते हैं इसलिए मुझको जो है आने से मना कर दिया किया है। किम च पुत्रा तथा पौत्रा राक्षसे न हता बलात् किम वा स्त्री भी सहेवायम भोजनम कुरुते हरि। तो भीमसेन ऐसा कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कौतुक के लिए फेनिकाओं को चबान आरंभ किया है, अब कर्र कर्र होगा खूब जोर जोर से, तो आवाज करने लगे कृष्ण कि भीमसेन सुनेंगे मतलब खा रहे तो कृष्ण जो है जोर जोर से खाने की आवाज करने लगे, तो उन्होंने वो चीज चबाना शुरू किया जिससे आवाज होती खूब जोर जोर से है? तो फेनिकाओं को जो है चबाना आरंभ किया जिनके दबने से जोर जोर की आवाज होने लगी। एवं वदति भीमे तु कौतुकार्थम महीपते कृष्णस्य वादयामास फेनिका चर्वण सुनम। फिर श्री कृष्ण पापड़ चबाने लगे जिसमें और जोर से आवाज हो खाने की, भीमसेन सुनेंगे और मुझे नहीं खिला रहे हैं अकेले अकेले खा रहे हैं, तो पापड़ चबाने लगे उससे और भी जोर से शब्द होने लगा। इसके बाद वे कढ़ी पीने लगे जिसको घोटने में गले में घटघट शब्द होने लगा, कढ़ी पीने लगे। उस समय भीमसेन को चढ़ाने के लिए उन्होंने ओठों की विचित्र भावभंगी बना ली, तब भीमसेन उस शब्द को सुनकर हंसते हुए कहने लगे कुर्वन्नोष्ठ पुटम रम्यम भीमसेनम प्रकोपयन द्रुकोदरस्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यम प्राह हसन निवे। अरे जो पहले मठा पीने के अभ्यासी थे पहले केवल मठा ही पीना जानते थे कुछ खाना पीना नहीं आता था, वे इस समय ओटाए हुए दूध कैसे पी रहे हैं? मैं उस दाई को नहीं जानता जिसने इनके गले को बढ़ा दिया है, बच्चे गले में उंगली डाल करके अंगूठे डाल करके गले को गला बढ़ाती है ना, गले को बढ़ा दिया, यदि पता लग जाए उस दाई की नाक काट लूं। अथवा उसका वध ही कर दूं, ना जाने उसने इनके गले में अंगूठा डालकर उससे बढ़ाया था या मूसल डाल करके बढ़ाया। मूसल नहीं, हल डाल करके बढ़ाया है, हल डाल करके बड़ा किया है इनका गला। नासा छेदो वधो न्याय पापिष्ठाय ततोधिकम कि मुंगुष्ठे न जनितो मुसले न हले न वा। परंतु जब श्री कृष्ण इनकी बात अनसुनी कर दी, कोई उत्तर नहीं दिया, तब भीमसेन फिर बोले क्या तुम्हारे गले में बड़ा अटक गया है? क्या मैं आकर उसे गदा से मसल दूं? नहीं नहीं, मेरे तर्क को धिक्कार है प्रलय काल में जिनके गले में बड़े बड़े पर्वत बिना किसी अटक के प्रवेश कर जाते हैं तो बड़ा क्या अटकेगा, बड़े बड़े पर्वत भी जो है इनके गले में अटकते नहीं है, चले जाते हैं वहां बेचारे, इस बड़े की क्या गिनती की जा सकती है। परंतु गोविंद उस प्राचीन अभ्यास के कारण कहीं अपने कुटुंबियों को ही मत निकल जाना, तुम्हारे पास में भी देवकी हैं और सब पत्नियां हैं, उनको ही नहीं खा जाना तुम, ये तुम्हारा अभ्यास बहुत ज्यादा बना हुआ है खाने का है? सब जो है लोगों को जो है खा जाते हो, पर्वत वन नदियां समुद्र सब निकल जाते हो। वटकस्य वराकस्य गणना कात्र कीर्तिते तेनाभ्यासे न गोविंद मां कुटुंबम प्रभक्षये। अरे कहीं दूर देश से यहां आए हुए मुझे भीमसेन को ही ना खा जाना, अभी मैं आया हूं तुमसे मुझे ही खा जाओ है? अब तो मैं बहुत डर गया हूं, मुझे ही ना खा जाना, नहीं तो तुम्हारे उधर में पहुंचकर मैं सुखदायक नहीं सिद्ध होऊंगा, तुम्हारे पेट में पहुंच जाऊंगा तो तुमको फिर सुख नहीं मिलेगा, बहुत परेशानी होगी मुझको खाने से, क्योंकि मेरा गमन नीचे की ओर नहीं होता, मैं सदा ऊपर की ओर गमन करता हूं, ऊपर जाऊंगा मैं, अगर मुझे खा जाओगे तो नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ऐसी दशा में तुम्हारे सिर की ओर जाऊंगा और वहां प्रवेश करके चराचर विश्व को देखूंगा, पूरा विश्व नीचे तुम्हारे उदर में जो स्थित है उसको मैं ऊपर से दर्शन करूंगा सिर में जाकर के। अधो न गमनम मह्यम ऊर्ध्वम गंतास्मि ते शिरः यत्र प्रविष्टे न मया दृश्यते साचराचरम। पुरुषोत्तम, उस समय लोग तुम्हारी ही निंदा करते हुए कहेंगे, निंदा तुम्हारी होगी, क्या कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पांडव पुत्र भीमसेन बहुत बड़ी आशा लेकर अकेले आए थे, उन्हें श्री कृष्ण ने खा लिया। यही सब लोग कहेंगे कि मैं आया था तुमसे मिलने के लिए और तुमने मुझे ही खा लिया। भीमसेन के बिना इस भूतल पर माता कुंती क्या करेंगी, अब तुम मुझे खा जाओगे तो माता कुंती क्या करेंगी, इसलिए मेरे साथ साथ तुम उन्हें भी खा करके सुखी हो जाओ। इसलिए मेरी माता कुंती को भी खा लो, जिसकी धर्मराज युधिष्ठिर ने सदा रक्षा की है, ऐसे मुझ भीमसेन को आज तुम्हारे द्वारा खाया गया सुनकर तुम्हारी बहन सुभद्रा तुम्हें राक्षस समझेगी। और वो पुत्रहीना माला किससे अपना दुख निवेदन करेगी, उसके पुत्र का तो पहले से ही मृत्यु हो चुकी है, अब वो किसको अपना दुख बताएगी जब देखेगी कि तुमने मुझे खा लिया है। प्रलय काल में तुम ही सबका संहार करते हो, अतः तुमको तो दोष नहीं लगता, तुम मुझे खा जाओगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, है ना, कि तुम तो सबका संहार करते हो प्रलय में, क्योंकि पीछे तुम सबकी सृष्टि भी कर देते हो, सबको बना भी देते हो, है ना। मैं किसी को जो है दोष लगता है मारने का, तुम तो जिंदा नहीं कर सकते किसी को, तुमने मारा क्यों, इसलिए दोष लगता है, लेकिन तुमको तो दोष नहीं लगता क्योंकि तुम सबको जिंदा भी करते हो। परंतु नाथ, सृष्टि काल में इस भीमसेन की सृष्टि मत करना, फिर मेरी सृष्टि नहीं करना, यदि मुझे उत्पन्न नहीं करना हो तो व्यर्थ में अपना दास नहीं बनाना, अपना दास नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारी सेवा में तो बड़ा कष्ट ही कष्ट है। भीमसेन की यह बात सुनकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के मन में बड़ा विस्मय हुआ, वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, भगवान श्री कृष्ण का भीमसेन तुम्हारा स्वागत है। महाराज युधिष्ठिर कुशल पूर्वक तो है ना, दूसरे को मान देने वाले वीर, आओ तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करो। भीमसेन स्वागतम ते कुशल्यास्ते युधिष्ठिर मया तुम सहितो वीर भोजनम कुरु मानद। तब भीमसेन बोले, श्री कृष्ण पहले तुम खाकर भली भांति तृप्त हो लिए, तब पीछे आदर पूर्वक मुझे खाने के लिए पूछ रहे हो, तुम तो सारे संसार के स्वामी हो, तुम्हारे संतोष हो जाने पर मैं भी परम तृप्त हो गया। भीमसेन बोले, तृप्तोसि कृष्ण पश्चान माम परिपृच्छसि सादरम तृप्ते त्वयि जगन्नाथे पराम तृप्तिम गतोऽस्मि अहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबली भीमसेन अब तुम मेरे परोसे हुए पदार्थों को भोजन करो, अब मैं तुम्हें परोसता हूं, अब तुम जो है खाओ, अब मैं परोसूंगा, मैंने खाया है, अब मेरे परोसे हुए पदार्थों को तुम भोजन करो, मुझे अर्जुन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ये बता रहे हैं कि यहां पर भी घर में माता है, पत्नियां हैं, सब है, अर्जुन के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए उन कुंती नंदन से बढ़कर स्त्री पुत्र मित्र बांधव अथवा अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। इतनी बात कहकर श्री कृष्ण ने भीमसेन का दाहिना हाथ पकड़कर बैठा लिया, उन्हें भोजन कराकर उनके साथ वे भी आसन से उठ पड़े। तो इस प्रकार कथा तो आगे और पीछे काफी है, लेकिन मैं ये सुनाना चाहता था, तो बड़ी रोचक कथा है, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? इसमें जो पहले जो हो चुकी है, हाँ, हिंदी में नहीं ना किताब, हिंदी में नहीं है, अगर पता होता तो मैं ले आता। बड़ी सुंदर ये घटना, बड़ी सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु जो है जब अद्वैचार्य के घर में भोजन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु दूसरी बात बोलते हैं और नित्यानंद प्रभु बिल्कुल उल्टी बात बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकता। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो भगवान को भोग लगाया है, तो बहुत बहुत बढ़िया, कृष्ण को भोग लगाया है, लेकिन वो तो भगवान चैतन्य के लिए रखा हुआ था। तो अद्वैचार्य बोले कि नहीं, आपके लिए है, आपको ये सब ग्रहण करना है। तो फिर भगवान बोले कि नहीं नहीं मैं तो इतना नहीं खा सकता, मुझे थोड़ा सा निकाल दो, क्योंकि सन्यासी के लिए जूठा छोड़ना भी उचित नहीं है। तब अद्वैताचार्य जो है उनको जो है दूसरे प्रकार से डांटते हैं कि कपट मत करो, कपट छोड़ करके भोजन करो, तुम्हारे लिए भोजन कुछ भी नहीं है, एक ग्रास भी नहीं है। जगन्नाथपुरी में तो तुम जो है कितने बार खाते हो, है ना, और कितना खाते हो, है कपट मत करो मेरे सामने, खाओ कपट छोड़ करके खाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से डांट रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु डांट खा करके और जो है भोजन शुरू करते हैं भोजन करना। और नित्यानंद प्रभु जो है उल्टा बोलने लगे ना? तो वो क्या बोले कि मैं तीन दिन से भूखा हूं, आज सोचा था कि कुछ आधार होगा भोजन, कुछ तो आधार मिल जाएगा मुझे, लेकिन ये तो मेरा जो है आधा पेट भी नहीं, इससे मुझे आधा पेट भी नहीं भरेगा इससे। तब अद्वैताचार्य जो है उनको जो है दूसरे तरीके से डांटते हैं। नित्यानंद कहे कैलू तीन उपवास आज पारण करीते छिले बड़े आस, कि तीन दिन से मेरा उपवास हो रहा है, नित्यानंद भूखे रहे हैं। ये सब हंसी की बातें हैं, है? और हंसी मजाक में जो है झूठ चलता है, झूठ बोलना चलता है, है ना। तो तीन दिन से मेरा उपवास हो रहा है, आज बड़ी आशा थी कि कुछ पारण होगा, पारण का मतलब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा व्रत खोलेगा, थोड़ा सा पारण होगा, आज बड़ी आशा थी कि थोड़ा सा पारण हो जाएगा। आज उपवास हैला आचार्य ने मंत्रणे अर्ध पेटे पेट ना भरी बे यही ग्रासे के अन्य, तो आज तो बड़ी आशा थी आचार्य के निमंत्रण से है, लेकिन आधा पेट भी इसमें नहीं भरेगा, ये तो एक अन्न एक ग्रास मात्र है, ये तो एक ग्रास मात्र है, इसे तो आधा पेट भी नहीं भरेगा मेरा। तो बड़ी चिंता हो गई नित्यानंद प्रभु को कि इसमें तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरने वाला है, एक ग्रास मात्र है। आचार्य कहे तुम्हें हो तैर्थक सन्यासी कभू फल मूल खाओ कभू उपवासी, तो आचार्य ने उनको जो है दूसरे प्रकार से डांटा कि तुम तो जो है तैर्थिक सन्यासी हो, कभी जो है फल मूल खाते हो और कभी जो है उपवास रहते हो, तो यहां आशा मत करो कि तुम्हें जो है कुछ ठीक से खाना मिलेगा, जो कुछ भी मिल जाए खा करके उठो। थोड़ा सा दरिद्र ब्राह्मण घरे ये पाइल मुष्टि के अन्न यहा ते संतुष्ट हो छाड़ लोभ है मन, दरिद्र ब्राह्मण के घर में जो एक मुट्ठी अन्न जो मिला है तुमको, दरिद्र ब्राह्मण के घर में आए हो, एक मुट्ठी जो अन्न मिला है उससे संतुष्ट होकर के और जो है मन में अब और लोभ मत करो, और ज्यादा लोभ मत करो एक मुट्ठी, जबकि था बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे नितिन प्रभु कह रहे हैं बहुत थोड़ा है, हाँ थोड़ा लोभ ज्यादा लोभ नहीं करना ना? खाओ इसी को खाओ। नित्यानंद बले याबे कैले ने मंत्रण तत दीते छाह यत करिए भोजन। तो नित्यानंद बोले याबे कैले, जब तुमने निमंत्रण दिया है तो जितना हम चाहें उतना भोजन करेंगे, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। नित्यानंद बोले जितना मैं खाऊंगा उतना जो है भोजन मिलना चाहिए मुझे, निमंत्रण किया है, ये निमंत्रण है। सुने नित्यानंदर कथा ठाकुर अद्वैत कहे न ताहारे किछु पाइया प्रीत। तो नित्यानंद की बात सुनकर के अद्वैत ठाकुर कुछ प्रसन्न होकर के बोले, आनंद पूर्वक बोले, भ्रष्ट अवधूत तुमी उदार भरिते सन्यास ले आछे बुझी ब्राह्मण दंडिते। कि तुम जो है भ्रष्ट अवधूत हो, तुम अवधूत बने हो और तुम कहो भ्रष्ट हो, तुम अवधूत उदर भरिते पेट भरने के लिए सन्यास लिया है तुमने, कुछ काम नहीं है, कुछ काम हम नहीं करना चाहते हो तो सन्यास ले लिया है कि बिना कुछ काम के पेट भरता रहेगा, तो पेट भरने के लिए सन्यास लिया है और मेरे जैसे ब्राह्मणों को जो है कष्ट पहुंचाने के लिए आते हो तुम्हें खेते पारदस विषय मनिर अन्न आमी ताहा कहा पाबो दरिद्र ब्राह्मण। तुम्हें खेते पार दस बीस मनिर अन्न, तुम्हारे खाने के लिए तो है दस बीस मन भोजन चाहिए, तुम्हारे खाने के लिए तो दस बीस मन भोजन चाहिए, लेकिन हम मैं दरिद्र जैसा, मैं दरिद्र ब्राह्मण, मेरे जैसा दरिद्र ब्राह्मण कहां से पाएगा इतना इतना भोजन कहां से पाएगा। ये पाया छा मुष्टि एक अन्य ताहा खाया उठ, पागलामी न करी है न छाड़ी झूठ है। तो जो कुछ भी एक मुट्ठी अन्न जो तुम्हें मिला है उसको खा करके उठो। क्या कहा, एक मुट्ठी जो अन्न जो तुम्हें मिला है उसको खा करके उठो, यानी चलते बनो। उठो, पागल आमी ना करी है और पागलपन मत करो यहां, और झूठा भी नहीं छोड़ना है। झूठा भी नहीं छोड़ना है अपना, मतलब हमारा घर अशुद्ध नहीं करो, झूठा नहीं छोड़ना है। लेकिन कहने का मतलब झूठा नहीं छोड़ना, मतलब सब खाओ, है ना, लेकिन सेवा की भावना है। लेकिन देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, तुम झूठा नहीं छोड़ना अपना यहाँ। ए मत हास्य रसे करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाया प्रभु छाड़े न व्यंजन। इस प्रकार के हंसी के रस में भोजन कर रहे हैं और भगवान जो है भोजन करते हैं तो आधा आधा छोड़ते जाते हैं, कटोरी में जो हर भोजन है हर चीज आधा आधा छोड़ते जा रहे हैं। सही व्यंजन आचार्य पुनः करे न पूरण, ए मत पुनः पुनः परिवेशे व्यंजन। तो चेतन महाप्रभु जो है जब खाते हैं तो आधा आधा छोड़ते जाते हैं कटोरी में, और आचार्य क्या करते हैं उसी को भरते जाते हैं, जो कटोरी में आधा छोड़ा है उसको भरते जाते हैं। दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थन, प्रभु बलेन आर्य कत करीबे भोजन। तो दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थन, अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की कि आप और खाइए, उनके जो है सब कटोरियां भरते जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कितना अधिक खाता जाऊं, चैतन्य महाप्रभु मैं कितना अधिक खाता जाऊं। आचार्य कहे यदि याची ताहा न छाड़ी ब्या, एखन ये दिए तार अर्धे कह खाई ब। आचार्य ने कहा कि आप जो है इसको छोड़िए नहीं, जो मैंने आपको दिया है, जो कुछ भी मैं दे रहा हूं आप उसको आधा छोड़ सकते हैं और आधा खा सकते हैं, आधा खा सकते हैं आधा छोड़ सकते हैं। नाना यत्न दैन्य प्रभु रे करी ले भोजन, आचार्य रे इच्छा प्रभु करी ले पूरन। नाना प्रकार की दीनता से जो है प्रभु को तो भोजन करा रहे हैं, भगवान चैतन्य भोजन नहीं करना चाहते तो दीनता से भोजन करा रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु जब ऐसी बात बोलते तो उनको जो है तिरस्कार कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो दोनों तरह का उल्टा उल्टा जो है व्यवहार है। नित्यानंद कहे आमार पेट ना भारी ला, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा पेट भर के मैं कितना खाऊंगा, और नित्यानंद उल्टा बोल रहे हैं हमारा पेट नहीं भरा। लैया यहां तोर अन्न किछु ना खाइला। अब थोड़ा सा जो बच गया है तो वो क्या कह रहे हैं नितिन प्रभु कि हमने हमारा पेट नहीं भरा है और हमने इसमें से कुछ नहीं खाया, ले लो अपना वापस। हमने कुछ नहीं खाया, ले लो अपना वापस है? अब झूठा जो है जो थोड़ा सा बचा है उसको कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया इसमें से, ले लो वापस। ये तो बलि एक ग्रास भात हाथे लैया, उझाली फैली ले आगे ये न क्रुद्ध हया। इस प्रकार से एक जो है ग्रास जो भात का है हाथ में लेकर के और उनको फेंका गुस्से में अद्वैताचार्य के ऊपर, गुस्से में फेंका अपना झूठा जो है अद्वैताचार्य। भात दुई चारी लागे आचार्य रे अंगे, भात अंगे लैया आचार्य नाचे बहु रंगे। तो दो चार जो दाने भात के थे आचार्य के शरीर में पड़ गए, तो उससे जो है बहुत आनंद हुआ अद्वैचार्य को, और नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु का जूठा उनके शरीर में लग गया तो बहुत आनंद आया। लेकिन अब जो है वो बोल रहे हैं उल्टा कि हम तुमको निमंत्रण करने का हमें फल मिला, ये फल मिला, आगे से किसी सन्यासी को निमंत्रण नहीं करूंगा मैं। और इसके कहने का मतलब यह है कि अब किसी सन्यासी को निमंत्रण करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा पूरा जीवन है सफल हो गया, कृतकृत्य हो गया। लेकिन कहने का कहते दूसरी तरह से कि आगे से किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा मैं, देख लिया सन्यासी को बुलाने का परिणाम देख लिया कि कैसा कैसा होता है। अब धूतेर जूठा लागिल मोरे अंगे, पारा में पवित्र मोरे कैला यही ढंगे। हाँ, तो इस ढंग से मुझको जो है तुमने परम पवित्र कर दिया। तो वैसे तो असली बात बोल रहे हैं, लेकिन वैसे व्यंग से बोल रहे हैं कि तुमने मुझे परम पवित्र कर दिया है ना, ये एक तरह से अशुद्ध कर दिया तुमने, है ना। फिर वो बोल रहे हैं आज का जो श्लोक है, तोरे निमंत्रण कारी पैनो तारे फल, तोरे जाति कुल नाही सहजे पागल। तुमको निमंत्रण करके आज मैंने फल पाया है, तुम्हारी कोई जाति कुल नहीं है। तो जाति कुल नहीं, वैष्णव, वैष्णव में जाति बुद्धि क्या है, सनार की। तो जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है कि शूद्र वैष्णव या ब्राह्मण वैष्णव, तो वो नारकी है ना। क्या है, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसुंदरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। तो भगवान के सभी ग्रह में शिला की भावना करे है, और जो है गुरु में मनुष्य की भावना करे, वैष्णव में जाति की भावना करे सनारकी, तो वो पहले से ही नरक में है। मतलब इतना निश्चित हो गया नरक में जाना कि समझ लो कि नरक में चला गया वो सनारकी, है ना। लेकिन वो जो है अद्वैचार्य प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारी जाति और कुल कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन वास्तव में तो प्रशंसा हो रही है। और सहजे पागल, सहज में ही पागल हो, सहज में पागल हो मतलब किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं है, तुम जन्म से ही मतलब पागल हो, है ना, जन्मजात पागल हो, है ना। तो कहने का मतलब कि इतनी दिव्य स्थिति है तुम्हारी, है ना, तुम्हें पागल तो होना ही है, है? अब या तो कृष्ण के लिए पागल हो या माया के लिए पागल हो, है ना। अगर आप देखें तो वास्तव में कितना पागलपन है, आप सोचिए कितना पागलपन है कि हम, हमारी स्थिति जो है कितनी पागल की है। आप सोचिए कि कभी मक्खी का शरीर मिलता है, हैं? तो अपने को क्या समझ रहे हैं, मैं मक्खी हूं, हैं? उड़ती रहती है, और इधर से जो है वो कूड़ा, कूड़े में बैठी है मक्खी, वो कूड़ा उधर चला गया, उधर चली गई, उसे कुछ पता नहीं कि वो कहां से कहां आ गई, है ना, और कहां कब किस में उसको मरना है उसको कुछ पता नहीं, कहां उसका जन्म हुआ कैसे जन्म हुआ कुछ पता नहीं, और फिर वही छिपकली बन जाती है, वही जो है बैल बन जाता है, उसको कुछ पता नहीं है कि पहले वो मक्खी था अभी बैल बन गया, मतलब कितना पागलपन है। अभी वो उसको जो है फिर मरना है, कैसे मरना है, फिर उसको शरीर मिलना है, फिर दूसरा शरीर मिलना है, मतलब अगर देखें तो माया में हम जो है कितने पागल हैं, है ना। तो या तो आप जो है कृष्ण के लिए पागल हों या माया के लिए पागल हैं। तो लोग जो है बोलते हैं कि भाई ये लोग तो पागल हैं, ये तो पागल नहीं, हरे कृष्ण वाले जो है बहुत पागल हैं, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, हरे कृष्ण केवल करते फिरते हैं, हैं? तो ये लोग तो ये पागल हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो वो कितने पागल हैं, कितने जन्म उन्होंने लिए संसार में, उन्हें कुछ पता नहीं है और लिए हैं जन्म, और वो सोचते हैं कि बस यही हमारा जीवन है, और कितने जन्म ले चुके हैं और कितने कष्ट भोगे हैं, कितने कितने नरकों में गए हैं, 84 लाख जन्म में भ्रमण कर रहे हैं, कितने पागल हैं, और आगे भी जो है कितने कितने उनको जो है कष्ट भोगने हैं, मृत्यु का कष्ट भोगना है, यमराज के दूर आएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं, वो जो है अपने को जो है सुखी समझ रहे हैं कि मैं सुखी हूं, कितना पागल है। तो या तो कृष्ण के लिए पागल हो और या फिर जो है माया के लिए पागल हो, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री, अच्छा आपका प्रश्न, हाँ प्रश्न बोलिए। भक्त लोग मजाक कर सकते हैं, लेकिन जब मजाक समझने की स्थिति में हों, ठीक है ना, तो वो आपस में मतलब हो सकता है और बराबर बराबर के धरातल पर होता है। अद्वैचार्य और नित्यानंद प्रभु जो है बराबर के धरातल में है, चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजाओं के समान है, तो ऐसी स्थिति में होता है। तो मजाक जब किया जाता है तो ये सोच करके किया जाता है कि जिसके साथ मैं मजाक कर रहा हूं वो तैयार है सुनने के लिए और वो भी जो है इसका आनंद लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर मान लो आप जो है मतलब कुछ दुखी मूड में हैं, है ना, और मैं आपको मजाक करूं उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे मजाक किया यदुवंश के जो बालक थे, तो उन्होंने मजाक किया कि उनसे तपस्वी ब्राह्मणों के साथ, है ना, तो वो ले गए सांबा को स्त्री बना करके और पेट में जो है कुछ घड़ा रख दिया, है ना, कि ये जो है महाराज ये जो है स्त्री गर्भवती है, ये जानना चाहे थे कि पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को जन्म देगी। तो उन्होंने फिर मजाक का उत्तर जो है मतलब बहुत गलत तरीके से दिया, ना तो पुत्र को जन्म देगी ना पुत्र को जन्म देगी, मूसल को जन्म देगी जो पूरे यदुवंश का संहार करेगा। तो भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं, है ना, कि आपको मजाक करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे मजाक करनी, किसके साथ मजाक करनी, कब मजाक करनी है, है ना। किसी का अपमान करने के लिए मजाक नहीं करना है, आप समझे ना। और मजाक किया जाता है तो इस तरह से मजाक किया जाता है कि उसका जो है सम्मान हो रहा है, उसको महसूस हो कि ये मेरा सम्मान कर रहे हैं, अपमान के बहाने जो है सम्मान कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सत्यभामा भी बोल रही हैं तो वो जो है मतलब कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो कृष्ण के साथ भी भक्त लोग मजाक करते हैं, है ना। राधा रानी मजाक करती हैं, गोपियां मजाक करती हैं, कृष्ण की पत्नियां मजाक करती हैं, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री